रात एक क्लास चल रहा था, 10/11/1966 गुरुवार को चौथी पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। प्रजापिता कहाँ कहेंगे, मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में या स्थूल वतन में? स्थूल वतन में ही कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्यों की प्रजा है जो भी 500-700 करोड़, वो यहाँ स्थूल वतन में है। और प्रजापिता उनका बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो प्रजा जब तक इस दुनिया में है, तब तक प्रजापिता सूक्ष्म वतन में वापस नहीं जा सकता। भले महामृत्यु का समय आ जाए, महाविनाश का टाइम आ जाए, सारी दुनिया आग में जलने लगे, तो भी जो मनुष्य सृष्टि का सच्चा बाप है, वो 500-700 करोड़ बच्चों में से कोई को भी धधकती हुई इस दुनिया की ज्वाला में छोड़कर नहीं जा सकता। कि चला जाए और सूक्ष्म वतन में जाके बैठ जाए, तो बाप बैठकर समझाते हैं, ये प्रजापिता व्यक्त वतन में व्यक्त है, अब व्यक्त नहीं है। मानव व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, और पतित भी है। सारी दुनिया पतित है, तो बाप भी पतित है। देखते भी हो कि सत्य रूपी झाड़ के नीचे पतित खड़ा है, झाड़ में दिखलाया ना बच्ची, देखो कि मनुष्य सृष्टि का झाड़ है और वो सारी प्रजा का पिता है। मनुष्य सृष्टि का जब झाड़ पूरा होता है, तो मनुष्य सृष्टि के पिछाड़ी में ऊपर में है। झाड़ के ऊपर कौन है? है शंकर, जिसे भक्ति मार्ग में जगत पिता कहा जाता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरौ कहा जाता है। तो सच्ची बच्चे के आदि में नीचे भी सीढ़ी के चित्र में भी नीचे पड़ा है। अच्छा पीछे क्या कहते हैं ये? मनुष्य शशि के झाड़ में पीछे जब सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो जाता है, सब पतित बन जाते हैं, भोगी बन जाते हैं, तो लास्ट में योग में बैठते हैं बच्चों के सहित। ठीक है ना बच्चे? मनुष्य सृष्टि के झाड़ में कलम लगाते हैं, तो नीचे क्या करने के लिए बैठते हैं? क्या बनने के लिए बैठते हैं? वो इसलिए बैठते हैं जैसे सारे जड़जड़ी भूत झाड़ का जो बीज है पहला बीज जिसे बाप कहा जाता है, वो बीज सारे झाड़ से क्या हो जाता? डिटैच हो जाता है, झाड़ के अटैचमेंट में नहीं रहता। चाहे जड़े हो, तना हो, टहनिया हो, पत्ते हो, फल हो, फूल हो, किसी के भी अटैचमेंट में नहीं रहता, डिटैच हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाता है, अर्थात इस फर्श की नीचे की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रहता, फरिश्ता बन जाता है। तो याद में किस लिए बैठता है? फरिश्ता बनने के लिए, दुनिया से डिटैच होने के लिए। तो फिर उसे सूक्ष्म मतन में भी दिखाना पड़े। और यहाँ ही सृष्टि पर भी दिखाना पड़े। सूक्ष्म वतन में जो व्यक्त व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को आंखों से देखा जा सकता है, उसे इस दुनिया में भी दिखाना पड़े। और सूक्ष्म वतन में भी दिखाना पड़े। इस दुनिया में शरीर के साथ और सूक्ष्म वतन में आत्मा जो इस दुनिया में स्थूल शरीर धारण करती है, वो आत्मा सूक्ष्म स्टेज में टिक जाए। तो प्रजा का पिता जरूर यहाँ नीचे की दुनिया में भी दिखाना पड़े। वो सूक्ष्म वतन में तो हो गया अव्यक्त। आ माने नहीं व्यक्त माने देखने योग्य, जो सूक्ष्म वतन में इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये इस दुनिया में हो गया व्यक्त, माना व्यक्ति के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में। इसीलिए बोला था अव्यक्त वाणी में भी बोला था घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा किसी भी व्यक्त तन में प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। जो बाप दादा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो चुकी थी, इन आंखों से दिखाई नहीं देते थे, उन्हीं के लिए बोला कि वो निराकार बाप शिव कोई व्यक्त तन के द्वारा, मनुष्य शक्ति के बाप के द्वारा व्यक्त तन में प्रत्यक्ष हो जावेंगे। और 1966 की वाणी में भी बोल दिया था इन नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष पूर्व 5000 वर्ष हुआ। उस हिसाब से 1976 आता है, जिस 1976 को ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? अपने अपने लौकिक बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या मनुष्य शक्ति के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? जो मनुष्य शक्ति का बाप है, जिसे ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चा बुद्धि को कहा जाता है, तो ये बातें तुम बच्चों को भी समझाना और सीखना चाहिए। तत्त्वम माने वो, जो वो है सो तुम, वो ही तुम हो, क्योंकि वो जब आता है तो उसका विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। वो क्या है? निराकार है, तो बच्चों को भी नंबर वार निराकार बना कर जाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बना कर जाता है। इसलिए बोला जो भक्ति मार्ग में कहते हैं तत्त्वम, वो ही तुम हो। जो अव्यक्त है वो व्यक्त भी है। तुम भी ऐसे ही बनते हो, व्यक्त भी बनते हो और अव्यक्त भी बनते हो। भक्ति मार्ग में इसका क्या प्रूफ है? गीता में तो लिखा है अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त मूर्ति है तो मूर्ति अमूर्त नहीं है। अमूर्त माने जिसकी मूर्ति ना हो। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति तो आंखों से देखते हैं, नहीं देखते? देखते हैं। फिर कौन सी मूर्ति है जिसकी यादगार इस दुनिया में दिखाई जाती है? है शिवलिंग। लिंग माने साकार बड़ा रूप। मूर्ति तो है, दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई देश विदेश में, वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली, लेकिन अव्यक्त क्यों कहा? इसलिए अव्यक्त कहा कि वो लिंग मूर्ति हाथ पांव नाक आंख कान ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसमें दिखाई नहीं देती। अरे जब साकार है बड़ा रूप है तो वो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए दिखाई नहीं देती कि वो जब संपन्न याद की स्टेज में रहता है, संपन्न बन जाता है, संपूर्ण योग युक्त बन जाता है, तो उसे अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है। इस अवस्था को चित्रों में कैसे दिखाएं? इसलिए लिंग रूप दिखाया है। लिंग साकार भी है, बड़ा रूप है, जिसका सबसे जास्ती शास्त्र के यादगार कौन से मंदिर में दिखाया गया था? सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर में गोलाकार लिंगाकार पत्थर था, उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था, जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। ग्रैंड फादर को बाबा कहा जाता है, बाप का बाप। बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंड फादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो वो लिंग रूप जो हाथ पांव नाक कान कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों की स्मृति से परे की स्टेज में स्थिर हो जाता है, ऐसी याद में टिक जाता है। तब वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने योग्य बन जाता है। मुक्ति इस देह के बंधनों से मुक्ति, इस देह के विकारों से मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी वर्षा देता है, क्योंकि वो जो साकार लिंग रूप है वो कोई मुर्दा नहीं है जिसमें आत्मा ही न हो। उसमें वो हीरो पार्टधारी आत्मा है, सारी मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, जिसकी यादगार सोमनाथ के मंदिर में हीरा दिखाई गई है। वो हीरा कौन सी आत्मा की यादगार है? है शिव की यादगार नहीं, आत्माओं के बाप की यादगार नहीं है, है? आत्माओं का बाप भी है और वो मनुष्य सृष्टि का बाप आत्मा भी है, माने दो आत्माएं हैं, है? एक आत्मा है या दो आत्मा है? है दो आत्मा तो दो हीरे होने चाहिए। हीरा एक ही है, हीरा को हीरो कहा जाता है और शिव बाप न हीरो बनता है न जीरो बनता है। शिव बाप तो कहते हैं मैं कोई गिनती में नहीं आता हूँ, ये रतन 9 प्रकार के होते हैं जिनमें हीरा की गिनती होती है, अव्वल नंबर, परंतु मैं तो हीरा बनता ही नहीं हूँ। हीरा तो पत्थर होता है, 9 प्रकार के रतन पत्थर होते हैं, पत्थर बुद्धि बनते हैं या चैतन्य है, पत्थर होते हैं। तो शिव बाप आत्माओं का बाप कभी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? हैं? बाकी जो 9 रतन हैं, 9 ग्रह हैं, 8 देव हैं, जिनके बीच में अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ दिखाया जाता है, वो साफ पत्थर बुद्धि बनते हैं। परंतु शिव तो पत्थर बुद्धि नहीं बनता है, इसलिए सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा था वो शिव बाप की यादगार नहीं है, शिव बाप तो कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग और हीरा दिखाया गया जिसकी पूजा विक्रमादित्य ने की थी, नरक की दुनिया का राजा था या स्वर्ग की दुनिया का राजा था? नरक की दुनिया के जो राजाएं होते हैं वो राजाएं पतित विकारी होते हैं, या निर्विकारी बुद्धि होते हैं, पतित विकारी बुद्धि होते हैं। उन पतित विकारी बुद्धि राजाओं को अपना राज्य चलाने के लिए पवित्र रहने वाले ब्राह्मणों को मंत्री बनाना पड़ता है, या कोई को गुरु बनाना पड़ता है, जिनसे राय लेकर के वो हर कार्य करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य को द्वापर के आदि में ये बुद्धि किसी ने तो दी होगी कि तुम निराकार अव्यक्त मूर्ति की रचना करो और उसकी पूजा करो। तो जिसने ये सलाह दी वो सलाह देने वाला संगम युग में वही आत्मा है जो प्रैक्टिकल जीवन में रहते रहते मुक्ति और जीवन का मुक्ति का वर्षा देती है। जो देने वाला होगा वो स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति का जीवन में अनुभव करेगा या बिना अनुभव किए बच्चों को दे देगा? पहले स्वयं अनुभव करे तो वो कौन सी आत्मा है? मनुष्य शक्ति का बाप है। जिस मनुष्य शक्ति के बाप के लिए गीता में भी बोला है भगवान ने कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूँ? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो सच्चे रूपी रंगमंच पर वो साकार में चैतन्य सूर्य कौन है जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है? इस सच्ची में सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। इसलिए गीता में लिखा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, भले सारी दुनिया नष्ट हो जाए तो भी इस दुनिया में सत्य रहेगा जरूर, और असत्य को पाँव नहीं होते। झूठ बाघ खड़ा होता है। दुनिया में देश विदेश में इतने धर्म खंड हैं, सदा काल का अविनाशी धर्म खंड कौन सा है? भारत खंड। और बाकी चीन, जापान, यूरोप, अमेरिका, क्रिश्चियन धर्मखंड, इब्राहिम का इस्लाम धर्मखंड, अरब और अफ्रीका, ये सब विनाशी धर्मखंड हैं। सच्चे धर्म हैं या झूठे धर्म है? झूठे धर्म है। 2500 साल पहले न ये थे और महाविनाश के टाइम पर न ये धर्म खंड रहेंगे। एक ही धर्म खंड भारत है जो त्रिकालदर्शी आत्माओं के बाप की बताई हुई जो युक्तियां हैं श्रीमत है, ज्ञान है, जानकारी है, उस जानकारी में रत रहता है, इसलिए उसका नाम भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं संगम में कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तब तो जो अजन्मा बाप है आत्माओं का, जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण त्रिकालदर्शी है, इसलिए तीनों काल के सत्य को जानने वाला है। और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए सब भूल जाती है। तो त्रिकालदर्शी आत्माओं के बाप का जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान में सदा रहते रहने वाला भारत खंड है। संगम युग में भी जब बाप आते हैं आत्माओं का बाप, तो भी दुनियावी धंधे धोरी में रत नहीं रहता, काहे में रत रहता है? है जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, ज्ञान की बातों में ही रमण करता है। और जो संगम युग में होगा, शूटिंग पीरियड में होगा, रिकॉर्डिंग के पीरियड में होगा, ड्रामा के रिहर्सल के पीरियड में जो होगा, वही ब्रॉड ड्रामा में होगा, वही आत्मा शिव बाबा कही जाती है। शिव बाप का बच्चा, बड़ा बच्चा, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई भी बाप अपने कौन से बच्चे को वर्षा पहले पहले देता है, इसी में भारत के जो राजाएं हुए इसी उठा के देख लिया जाए, हर एक राजा ने अपने बड़े बच्चे को वर्षा दिया राजाई का, तो ये परंपरा कहाँ से चली? भगवान बाप से। भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, उन आत्मा रूपी बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप, प्रजापिता, जिसे भक्ति मार्ग में प्रजापति भी कह दिया है, क्योंकि वो ही भगवान का साकार रूप है जो सब प्रकार के संबंध है आत्माओं से जोड़ता है। नहीं तो आत्माओं के बाप का सिर्फ आत्मा रूपी बच्चों से एक ही संबंध है, बाप और बच्चों का, बच्चियों का भी नहीं। आत्मा रूपी सब बच्चे हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो आत्माओं का बाप और बाकी सब आत्माएं उसके बच्चे। उन बच्चों में जो बड़ा बच्चा है उस बड़े बच्चे को वो आत्माओं का बाप कौन सा वर्षा देता है? है अरे बाप है तो कोई वर्षा देता होगा ना। वो बाप कैसा जो अपने बच्चों को वर्षा ही न दे? कुछ न कुछ तो वर्षा देगा ना। तो वो आत्माओं का बाप क्या वर्षा देता है? हैं? वो बाप स्वयं निराकार है, आत्माएं भी निराकार हैं। निराकार आत्माओं को निराकारी बाप से निराकारी वर्षा चाहिए क्या? वो है ही नहीं साकार। जो खुद साकार नहीं है तो बच्चों को साकारी वर्षा कैसे देगा? वो है ही स्वयं निराकार। तो निराकार बाप क्या वर्षा देगा? निराकारी ज्ञान का वर्षा देगा। और वो निराकारी ज्ञान का वर्षा इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी दूसरा धर्म पिता नहीं ले पाता। या तो अधूरा अधूरा ज्ञान उठाते हैं, वो आत्माओं का बाप तो ऐसा बाप है जिसके पास अखूट निराकार ज्ञान का वर्षा है, जो कभी खूटता ही नहीं। उस ज्ञान के वर्षे में से कोई पूरा का पूरा वर्षा उठा ले तो भी वो पूरी का पूरा ही बचता है, खूटता ही नहीं। तो बताओ उस निराकार बाप का 100% ज्ञान का वर्षा लेने वाला दुनिया के धर्म पिताओं में से तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न शंकराचार्य। तो कौन हो सकता है जो उस निराकारी बाप का निराकारी टोटल संपूर्ण वर्षा उठा लेता है? कौन हो सकता है? सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, धर्म पिताएं भी जिसे अपना बाप मानते हैं, धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी उसको मान्यता देते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में भी मान्यता है। किसकी मान्यता है? मानते तो हैं, लेकिन उसके जीवन चरित्र को नहीं जानते। सभी धर्म के धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स, उनके धर्म ग्रंथों में आदम का जिक्र आया है, एडम का जिक्र आया है क्रिश्चियंस में, जैनियों में आदिनाथ का जिक्र आया है, और हिंदुओं में आदिदेव की बात आई है। जिसका कोई भी आदि नहीं, कोई नहीं जानता उनको जन्म देने वाला कौन। उसका कब जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु होती है, उसको मृत्यु में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं, उसको काल के गाल में जाता हुआ किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही मनुष्य जी पर है जो कालों का काल है, महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो महामृत्यु के समय सारी दुनिया को खा जाएगा, जो गीता में लिखा है, दंशा करालान चते मुखाने। क्या उस महाकाल का मुख विकराल दाढ़ों वाला है, जिन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जा रहा है, ऐसा साक्षात्कार अर्जुन ने किया। वो दाढ़े क्या हैं? जो आसमान में ऊपर भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर सागर के अंदर तैर रही हैं, उन एटम बम रूपी दाढ़ों में सारा संसार चबाया जाने वाला है। नहीं तो आज से 80 वर्ष पूर्व मनुष्यों की बुद्धि में नहीं था कि ऐसा भी कोई बारूद तैयार हो सकता है जिसमें सारी दुनिया नष्ट हो जाए। वास्तविकता तो ये है, जब नई सृष्टि रचने के लिए भगवान आता है, इस पुरानी सृष्टि पर कलयुग के अंत में, तब नई सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मणों की सृष्टि बनती है, और साथ ही साथ पुरानी सृष्टि का विनाश करने के लिए एटमिक एनर्जी भी तैयार होती है। सन 42 से पहले कोई की बुद्धि में नहीं था, जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटमिक विस्फोट हुए, छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की एटम बम्बियां छोड़ी गईं, तो लोगों को पता चला कि दुनिया में ऐसा खतरनाक बारूद भी हो सकता है जो सारी दुनिया को नष्ट कर सकता है। अर्थात भगवान बाप आते हैं तो एक तरफ ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण देवताओं की सृष्टि रचते हैं, जिसे नई दुनिया कहा जाता है, इसलिए भगवान बाप को क्रिश्चियंस में हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। क्या मतलब? हेवन की रचना करने वाला गॉड फादर। मुसलमानों ने उसे कहा है अल्लाह अव्वल दीन। कौन? अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन, धर्म की स्थापना की। तो एक तरफ तो नई दुनिया देवताओं की रचता है, और दूसरी तरफ पुरानी कली की दुनिया का विनाश करने के लिए एटमिक एनर्जी का निर्माण भी कराता है। दोनों कार्यों के लिए दो मूर्तियों को निमित्त करता है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। विनाश पुरानी सृष्टि का वो काम है जो दुनिया का कोई भी ग्रेट फादर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं कर सके। अपने अपने नए धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी चलती हुई धारणाओं का विनाश कोई ने नहीं किया। दुनिया में मिच्छरिटी बढ़ती चली गई। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो कार्य परमपिता परमात्मा शिव का, जो बड़ा बच्चा कहा जाता है, देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे भी बड़ा महादेव, जिसके लिए आज भी गायन है, क्या हर हर बम बम, ये टाइटल लगा हुआ है। पापों को हर लेता है, पापियों का हरण कर लेता है, हर हर, कहे से एटम बमों के विस्फोट करा देता है। जो एटम बम बनाने वाले बड़े बड़े बुद्धिमान इस सृष्टि के मनुष्य, जो इतने अहंकारी हैं कि ऐसा बारूद तैयार कर देते हैं, अहंकार में आकर के कि हम चाहे तो सारी दुनिया का विनाश कर सकते हैं, हम ही भगवान हैं, ऐसे नास्तिक जो न भगवान को मानते हैं, न भगवान की रचना स्वर्ग को मानते हैं, न देवताओं को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न कोई धर्म को मानते हैं, न धर्म पिता को मानते हैं, ऐसे नास्तिक महाअहंकारी दुनिया का विनाश करने की सामग्री तैयार कर देते हैं। परंतु उनमें ये ताकत नहीं होती है कि इतने खतरनाक चीज को अपने हाथों से विस्फोट करा सकें। मतलब 42-45 में तो 20-20 मेगावाट की छोटी छोटी बम्बियां थी, जैसे दीपावली पर बच्चे छोटे छोटे पटाखे तो फोड़ देते हैं, परंतु अब तो उन्होंने हजारों हजार मेगावाट की बड़े बड़े बम्ब बना रखे हैं। जमीन के अंदर सुरंगों में छुपाए रखे हैं, समंदर में पनडुब्बियों में लगाए रखे हैं, और बड़े बड़े हवाई जहाजों में आसमान में तैर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है, लेकिन बटन दबाने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर हमने बटन दबाया तो दूसरा देश चुपचाप नहीं बैठे, और ऐसे कई देशों ने बना रखे हैं, तो जानते हैं इस दुनिया का विनाश हो जाएगा और उसमें हम भी खलास हो जाएंगे। तो कहा जाता है हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। किस बात में हिम्मत है? जो देव आत्माएं हैं वो अच्छे कार्यों में हिम्मत करती हैं, जो असुर हैं भगवान बाप के सुर में सुर मिलाकर नहीं चल सकते, राक्षसी आत्माएं हैं, राक्षसी कर्म करने वाले, वो भी हिम्मत तो करते हैं। क्या ऐसा बारूद बनाने की हिम्मत करते हैं कि हम चाहे तो दुनिया को सेकंडों में खत्म कर दें? हिम्मत तो की, तो हिम्मत है बच्चे बाप उनकी मदद करते हैं। कब? जब बाप आत्माओं का बाप इस सृष्टि में आकर अपने बड़े बच्चे को आप समान निराकारी बना देता है, जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग देखा जाता है, पूजा जाता है ना, वो पूजा किसकी यादगार है? आत्माओं के बाप की यादगार है या मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है? वो मनुष्य सृष्टि का बाप याद की ताकत से अपने शरीर को, अपने देह को जब चाहे छोड़ सकता है, और शरीर को छोड़ करके उन वैज्ञानिकों में प्रवेश कर जाता है। इसलिए है हिम्मत देने के लिए कि तुमने जो रचना रची है वो रचना व्यर्थ न जाए, काम करके दिखाए। उन वैज्ञानिकों में प्रवेश करके वो बटन दबाने के लिए बुद्धि को प्रेरित कर देता है। इसलिए ये गायन होता है, हर हर बम बम, बमों के धमाके से 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया का खात्मा हो जाता है। कौन बचता है? कौन बचता है? अरे अभी तो बताया, गीता में लिखा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, तो कोई बचता है या नहीं बचता? कौन? वही जो झाड़ का बीज होता है वो कभी खत्म नहीं होता। जो बीज सारे जहर से पहले पहले अपने को डिटैच कर लेता है। शिव बाप भी यही सिखाने आए हैं क्या? आखिरी पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस दुनिया में कोई से भी मोह न रहे, क्योंकि सब विनाशी हैं। महाविनाश में महामृत्यु के समय कोई नहीं बचेगा, एक ही बचेगा, जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग, वो अव्यक्त मूर्ति ही बचेगी। एक आत्मा जिसका शरीर भी बचेगा और आत्मा भी बचेगी, जो ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में भगवान ने बोला, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला एक ही खेवैया हूँ। कौन है? शिव बाप। शिव बाप तो विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, विषय सागर के पार जाता ही नहीं। फिर विषय सागर के पार हमारी शरीर रूपी नैया को कौन ले जाने वाला है? हैं? शिव बाबा, जिसके लिए बोला इस सच्ची पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। सतयुग त्रेता में तो आत्मा रूपी सार में टिकाई ही रहता है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो दो कुल पैदा कर देते, उस समय भी वो शिव बाबा वाली आत्मा साकार और निराकार का मेल द्वापर के आज से ही मौजूद रहता है, जिसका नाम है भारत। भारत वो नहीं जड़ जमीन, बामन ज्ञान की रोशनी में रत लगा हुआ। द्वापर के आदि में वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है, क्या रचा? वेद रचे। वेदों का भी जो आदि है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, व्यास प्रसादात। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। बाद में वेदों की ऋचाओं की व्याख्याएं निकली, आरण्यक के रूप में, शतपथ ब्राह्मण आदि के रूप में, तो वो व्याख्याएं भी किसने लिखी? है वही व्यास जो बाद में व्यास गद्दी के रूप में गद्दी चलती रही। जो सांख्य योग के प्रणेता माने गए कौन है, जिनके लिए गीता में आया है सिद्धानाम कपिलो मुनि, सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिन कपिल मुनि के नाम पर कांपिल्य नगर बिसाया गया। पुराने थे पुरानी नगरी जहाँ पांडवों ने वर्षों गुप्तवास किया, ऐसा महाभारत पुराण में लिखा हुआ है। सांख्य का मतलब ही है सह आख्या, आख्या माने व्याख्या, कोई भी बात व्याख्या के साथ समझाई जाए, विस्तार के रूप में बताई जाए, उसको कहते हैं सांख्य। तो श्रीमद् भगवत गीता और वेदवाणी, इन वेदों का विस्तार आरण्यक शतपथ ब्राह्मण आदि और उनकी भी व्याख्या उपनिषद आदि और उनकी भी व्याख्या पुराण, जिनमें बड़े से बड़ा पुराण है महाभारत, इस महाभारत शास्त्र से पूरा एक बड़ा कमरा भर जाता है। तो द्वापर के आदिकाल में जो भी शास्त्रों की रचना हुई उन शास्त्रों का रचना रचयिता रचनाकार भारत ही साबित होता है। जिस भारत में कौन आता है, भगवान आता है, जड़ जमीन में आता है या चैतन्य आत्मा में आता है, है? चैतन्य आत्मा में आता है। जो गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, के बाद जितने भी बड़े बड़े राजाएं हुए सम्राट हुए चक्रवर्ती राजाएं हुए उस सरणी में जो बड़े से बड़ा चक्रवर्ती हुआ, बड़े से बड़ा सम्राट हुआ, जिसको कोई भी विदेशी आक्रांता जो यूरोपीय देशों से आए या इस्लामी धर्मखंडों से आए, लाखों लाख सेना लेकर के आए, वो विदेशी आतत आई, भारत में आकर के हार करके वापस चले गए या जीत करके गए? क्योंकि सत्य के सामने असत्य टिक ही नहीं सकता। उसके बाद कलयुग में तो विदेशियों और विधर्मियों के बार बार आक्रमण होते रहे, वहां भी ऐसे ऐसे भारतीय राजाएं हुए जिन्होंने विदेश से आए हुए वो आक्रांताएं जो भारत में सम्राट बनकर के बैठ गए उनसे भी हार नहीं खाई, सदा विजयी रहे। इसलिए शास्त्रों में इस मनुष्य सृष्टि के अंदर एक ही आत्मा गाई हुई है, जो अपने जीवन काल में सदैव विजयी होती रही, किसी युद्ध में हार खाई ही नहीं। जन्म जन्मांतर असत्य से युद्ध करना पड़ा, लेकिन हार नहीं खाई। इसलिए ये प्रश्न आता है कि भगवान बाप आत्माओं का बाप आत्मलोक से इस सृष्टि पर आता है तो एक ही मुकर्र रथधारी को क्यों चुनता है? औरों को क्यों नहीं चुनता? एक परिफेदा क्यों होता है? ऐसे क्यों बोला मुरली में कि मैं आता हूं तो भारत पर आशिक होकर आता हूं, भारत माशूक है और मैं उसका पहला आशिक हूं। अब भगवान ही जिसका आशिक हो उसको तो सारी दुनिया क्या मानेगी है? अरे सारी दुनिया को आशिक होना पड़े एक ही शिव बाबा माशूक है और बाकी सब आत्माएं है आशिक है। इसलिए कोई कारण इतना महत्व क्यों दे दिया?
भारत पावन
है,
भारत पावन है, पावन
है। अरे पतितम कामी कांटे में आता हूँ, भारत पावन है। भगवान का कार्य क्या कार्य है? स्वर की स्थापना हो गई, सतयुग त्रेता में सच स्वर की स्थापना हो गई, फिर तो खत्म। बाद में क्या द्वापर युग से कलयुग के अंत तक असत्य से युद्ध नहीं करता? तो सत्य बाप को क्या प्रिय है? जो सत्य बाप गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ। ट्रूथ इज गॉड कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जब आता है तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है, झूठे धर्म की स्थापना नहीं करता। सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है, उसको क्या प्रिय है? है सच्चाई प्रिय है। जो बच्चे तहे दिल से अपने लौकिक अलौकिक जीवन का पूरा पोता मेल सच्चाई से देते हैं, उन बच्चों पर नंबर वार फिदा होता है। जो बच्चे हैं वो नंबर बार बाप पर फिदा होते हैं। तो सत्य बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की दुनिया रची, ब्राह्मणों की सृष्टि रची और 3 बार पसंद नहीं आई, खारिज कर दी। ये शूटिंग कहाँ होती है? है कहाँ? संगम में। कब कब ये पता ही नहीं। अरे यज्ञ के आदि में ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि रची, हिरोशिमा नागासाकी बाहर की दुनिया में जन नष्ट हुए वो हद के थे, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो हीरो की समाप्त थी, नागासाकी जो मनुष्य सृष्टि का हीरा है, उसे हीरे की कमर में, भुजाओं में, गले में, सर के ऊपर कौन दिखाते हैं? नाग। कहते हैं गले पड़ गया। क्या रामायण में दिखाते हैं कि राम के गले पड़ गया? कौन? शेषनाग का अवतार कौन? लक्ष्मण। जन्म से लेकर अयोध्या में भी साथ नहीं छोड़ा, जंगल में चले गए तो भी साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही महाभारत और भागवत में दिखाया है, वही शेषनाग का अवतार बलराम भगवान के साथ दिखाया है। वो ही नाग जिसको वासुकी नाग कहा गया, वसु का पुत्र, वसु माने वसुदेव, ज्ञान धन संपत्ति देने वाला देव। वो वसु का पुत्र वासुकी नाग गले में पड़ा हुआ है, गले पड़ गया। वो छोड़ नहीं सकता जो गले पड़ गया, और जिसके गले पड़ गया वो पकड़ के फेंक नहीं सकता। वही भागवत में वसुदेव का पुत्र वासुदेव दिखाया गया। किसका पुत्र? वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति ज्ञान की, उसका पुत्र वासुदेव। तो देखो ये साथी हैं, षष्ठी के आदि में भी साथी, बाप दादा। कृष्ण और कृष्ण का बाप, त्रेता के आदि में भी, राम और राम का बाप, द्वापर के आदि में भी, विक्रमादित्य और विक्रमादित्य का बाप गुरु के रूप में, और कलयुग के आदि में भी पृथ्वीराज। और वहां जो भूल हो गई, पृथ्वीराज के द्वारा क्या भूल हो गई बड़ी है? कोई भूल हो गई? जो भारत के सारे राजा हैं पृथ्वीराज के विरोधी हो गए हैं? हाँ, अपनी भतीजी से शादी कर ली। जो भारतवासियों के लिए निषिद्ध काम है, मुसलमानों में तो होता ही आया है द्वापर के आदि से ही, क्योंकि मुसलमानों की तो जनरेशन ही नहीं थी, उन्हें अपनी जनरेशन बढ़ानी है तो जनरेशन बढ़ाने के लिए भाई बहन में ही शादी करने लगे। लेकिन भारत में तो ये बहुत खराब माना जाता, चाहे सगी भाई बहन हो, चाहे मामा के बच्चे हो, चाचा के बच्चे हो, भाई बहन ही माने जाते, उनका संयोग हो नहीं सकता। तो पृथ्वीराज ने क्या किया? संयोगिता से संग माने संपूर्ण, योगिता माने योग जोड़ लिया सारी इंद्रियों के साथ, तो अनाचार हो गया ना, वहीं से पतन हो गया। तो काम विकार रूपी कौन सा राजा था? है नहीं, पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन है मोहम्मद, जिसके मुंह में मद भरा हुआ था सुंदरता का, बार बार उसके ऊपर रहम आता रहा और बार बार उसको छोड़ दिया। नहीं तो ईश्वरीय नियम क्या है, एक बार माफ, दो बार माफ, बहुत करके तीसरी बार भी माफ कर लो, लेकिन इससे जास्ती माफी नामा लिखवाया या दिया तो बेवकूफी, बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। और वो ही हुआ तो लगातार भारत पर विदेशियों का आक्रमण होता रहा। और जो भारत है स्वाधीन था वो विदेशियों के अधीन हो गया। यही बात बाप समझाते हैं, ये विदेशी रावण संप्रदाय हैं, रावण के पांच मुख हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, अहंकारी हैं। ये पांच विकार कैसे पैदा होते हैं, हैं? देह से पैदा होते हैं। ये देह समझने की भूल भगवान बाप जब आते हैं संगम में तो कहाँ से शुरू होती है, है? संगम में जब बाप आते हैं, आत्माओं का बाप, जो देवान को छोड़ ही नहीं पाते, कहां से शुरू हुआ देवान? है कहां से शुरू हुआ? हैं? तिहत्तर से शुरू हुआ माना? यज्ञ के आदि में कहां से शुरू हुआ? अरे
आत्माएं उसमें आने लगी
यज्ञ में। शिव की कितनी मूर्तियाँ? तीन मूर्तियों में कितनी मूर्तियाँ आत्मा अभिमानी बन जाती है? एक बनती, विष्णु नहीं बनता। दो आत्मा अभिमानी बन जाती और तीसरी मूर्ति है देवान में रहती है, आत्मा अभिमानी नहीं बन पाती। अपन को भगवान बाप समझ करके बच्चों को गोद में तो लेते हैं, लेकिन गोद में लेते समय ये ध्यान नहीं रहता कि बच्चे अपन को गोद की औलाद समझेंगे या मुख की औलाद समझेंगे। क्या रिजल्ट हुआ है? थोड़े से बच्चे निकले जो अपन को ब्रह्मा मुख वंशावली समझ पाते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उससे ज्ञान पर फिदा होते हैं। और बाकी को अहंकार रहता है, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है। अरे तुम कल के बच्चे निकले हो, तुम क्या जानो मम्मा बाबा क्या थे। मारे देह अहंकार के सारा चौपट कर दिया। ब्रह्मा के बच्चों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में 2500 साल न ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं, न ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, न ब्रह्मा की पूजा होती है। कारण है, कारण यही कि जीते जी शरीर रहते रहते न ब्रह्मा ने आत्माओं के बाप को पहचाना कि सृष्टि पर आत्माओं का बाप कौन प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। अपन कोई बाप समझकर बैठ गए, मैं ही गीता का भगवान, मैं ही गीता पति भगवान, और उनके फॉलोअर्स भी क्या समझे बैठे हैं। गीता का भगवान कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा को ही साकार में गीता का भगवान मानते। शिवो अहम, मैं ही शिव का साकार रूप हूँ। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरे से बड़ा कोई ब्रह्मा नहीं है। जबकि शास्त्रों में तो लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाप भी कहते हैं मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। तो दादा लेखराज ब्रह्मा में तो 47 में प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू किया। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान मुरली सुनाते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा तो 47 से मुरली चलाना शुरू किया। पहले थोड़ा ही मुरली चलाते थे, तो 36 में ब्रह्मा के साक्षात्कारों का कृष्ण ने क्लेरिफिकेशन दिया। ज्ञान का बीज किसने डाला? तो ज्ञान का बीज डालने वाला बीज रूप बाप, उस बाप को ब्रह्मा ने पहचाना। क्या जो बाबा मुरली में बार बार पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा खुद ही नहीं जानता कि मेरे को जन्मदाता बाप कौन? क्यों नहीं जानता? क्योंकि देह बहन रहा। क्या देह बहन है? मैं हीरों का बड़ा व्यापारी, और ये भागीदार तो मेरा नौकर है दुकान का। ये अहंकार चढ़ा रहा, इस देह के अहंकार ने सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचानने दिया। तो 5 विकारों का बाप कौन हुआ? है कौन साक्षात देहभान? धर्म पिता है तो है ही देहभानी वाले, लेकिन उनका भी देहभान वाला, देह का जन्म देने वाला, देहभान को जन्म देने वाला कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके लिए बोला योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। और दादा लेखराज ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया तो उनको फॉलो करने वाले दीदी दादी दादाओं का भी हार्ट फेल होता जाता है। जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। बुद्धि से या प्रैक्टिकल में डकैतों का संग करेंगे तो डकैत बनेंगे, चोरों का संग करेंगे तो चोर बनेंगे, देहंकार वाले का संग करेंगे तो
देहंकारी बनेंगे।
तो बड़े से बड़ा देहंकारी धर्म पिता कौन हुआ है? जिसकी गोद में नौ धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण नौ कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। एक से एक कमजोर कुरी वाले, एक से एक पावरफुल कुरी वाले, जो कमजोरी आती है कहां से आई? कुखवंशावली बनने से आई। क्या हम कौन सी वंशावली के ब्राह्मण? बुद्धि में आया हमने ब्रह्मा की गोद ली है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, ये भूल गए कि ब्रह्मा की गोद तो विनाशी है। कुख माने गोद, देह का अंग है, ये देह का भान रहने से वो आत्मा सतयुग में जाकर के भले पहला पत्ता बनती है सत्य का, तो भी पहले जन्म से ही देह का सुख भोगती है या नहीं भोगती? देह का सुख कैसे भोगती? आंख भी देह का अंग है, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, दृष्टि से भी लगाव नहीं, क्योंकि दृष्टि भी देह का अंग है। और उनके बच्चे राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे? आंखों से, देह के अंग से। तो देह के अंगों का रस लेने से नीचे गिरना होता है। देह विनाशी है तो देह के अंगों का रस भी विनाशी है। जन्म पर जन्म लेते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती। और सतयुग के पहले जन्म में राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप हैं, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में सामने देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं। वाइब्रेशन का सुख लेते हैं, वाइब्रेशन से सारी सृष्टि बदलती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश पांच जड़ तत्वों का परिवर्तन करते हैं। इसे स्थूल दृष्टि से कैसे? वाइब्रेशन जी परिवर्तन करते हैं। वाइब्रेशन की शक्ति बहुत सूक्ष्म है, और जो शक्ति जितनी जास्ती सूक्ष्म होती है उतनी जास्ती पावरफुल होती है। तो पावरफुल सृष्टि का निर्माण करता कौन? कौन हुआ पावरफुल सृष्टि का रचयिता? हैं? प्रजापिता। शिव बाप को तो योग लगाने की दरकार ही नहीं। शिव बाप न योगी बनता है न कभी भोगी बनता है। जो बड़े से बड़ा योगी बनता है वो ही कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा भोगी बनता है। 16,000 रानियां गाई हुई है, 2,500 वर्ष की हिस्ट्री में इतना बड़ा भोगी राजा तो कोई भी दिखाया ही नहीं गया, जिसका मिसाल देकर के क्रिश्चियंस ने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। को देखो तुम्हारा भगवान कैसा है, 16,000 रानियां रखता है, महाविभिचारी। फिर रामायण का मिसाल देते, अरे तुम्हारा राम भगवान कैसा है, वो राम भगवान जिसकी अपनी घरवाली चुराई ली गई, वो राज्य के प्रजाजनों का क्या कल्याण करेगा, कैसे रक्षा करेगा? भारतवासी जो अपन को हिंदू कहलाते थे, क्या कहलाते थे? हिंदू। हिंग माने हिंसा, दू माने दूते, दूर करने वाले। आज शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की वो दुनिया है जो अपन को डबल अहिंसक समझते हैं। हम विकारों की हिंसा को भी दूर करने वाले हैं और स्थूल हिंसा को भी दूर करने वाले। कौन है वो ब्राह्मण है जो समझते हैं कि हम विकारों की हिंसा नहीं करते? ये शंकर पार्टी बड़ी विभिचारी है, महाविकारी है। भगवान आकर के इन विकारी बंदरों की सेना लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनाकर बेतुकी, ब्राह्मणों को बरगलाते रहते हैं। अब बताओ द्वापर युग से जो अपन को हिंदू कहते हैं, जो हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, वो अभी संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से ब्राह्मण हैं? वो ही बेसिक वाले ब्राह्मण हैं जो अपन को कुखवंशावली समझते हैं। मुखवंशावली नहीं है, ब्रह्मा के मुख से भगवान के निकले हुए महावाक्यों को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कमजोरी आ जाती है। योग की पावर नहीं आती, गोद का सुख लेने वाले भोगी बन जाते हैं और अहंकार बस अवकर्पण को समझते हैं कि हम ब्रह्मा की मम्मा की गोद में खेलने वाले बहुत भाग्यशाली आत्माएं, परंतु ये नहीं समझते अम्मा की गोद में दुदुमुए अबोध बच्चे बच्चा बुद्धि खेलते हैं या बड़े खेलते हैं? तो अपन को बच्चा बुद्धि नहीं समझते, भले भक्ति मार्ग में बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं, बच्चे के रूप में कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण के बड़े रूप को नहीं पूजते, ये नहीं जानते कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि संगम युग में ही शूटिंग करते हैं। क्या कृष्णवादी आत्मा दादा लेखराज गीता का साकार भगवान है? इसके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई विष्णु भगवान नहीं होता, कोई शंकर भगवान नहीं होता, ब्रह्मा ही भगवान है। और फॉलोअर्स भी यही कर्म करते हैं, दीदी दादी अपन को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं, ऊपर शिवलिंग और नीचे पहली शंकर की मूर्ति कुमार का दादी, बीच में जानकी दादी विष्णु रूप, और नीचे की ओर गुलजार दादी को बैठाया है ब्रह्मा। किसी के पास पुराने फोल्डर पड़े हुए हों ये त्रिमूर्ति दादियों के, तो निकाल करके संभाल के रखना, हेड ऑफिस में भेज देना, सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ सकती है। ये हैं भगवान को सर्वव्यापी कहने वाले। शुरुआत करता है ब्रह्मा, मैं भगवान, मेरे में भगवान, उसकी गोद में खेलने वाले कुकवंशावली ब्राह्मण कहते हैं मैं भगवान, मैं महादेव, मेरे में भगवान आता है, मैं ही विष्णु का अवतार हूँ। इस तरह करते करते जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख छोटे छोटे करेंगे, जैसा कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देख छोटे छोटे करते। ये परंपरा चलते चलते आखिरी इन कलयुग के अंत में जो मुसलमान पहले कहते थे कि खुदा अर्श में रहता है फर्श में नहीं रहता, आज वो मुसलमान भी कहते हैं खुदा जर्रे जर्रे में है। देखो इन देहधारी देहंकारी धर्मगुरुओं ने दुनिया की क्या हालत कर दी। भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, जान लिया, दूसरों को जना दिया, और सबकी बुद्धि सर्वव्यापी में बिखर गई या एकाग्र हो गई। अगर हम भगवान को एक व्यापी मानते होते तो बुद्धि एकाग्र बनती या बिखर जाती? हैं? एकाग्र बनती। ये देहंकार कहां से शुरू होता है? है माता पिता से, बड़े से बड़ा देहंकारी गुरु कौन है? माता कहती शिव बाबा,
ब्रह्मा बाबा।
वो ही रावण के चित्र में दिखाया है। पांच विकारों का बाप कौन है? देहंकार, गदा दिखाते हैं सर में। क्या यज्ञ के आदि से लेकर के अभी अंत तक 80 साल पूरे होने आए, वो गधा को कितना ज्ञान स्नान कराया गया होगा। बार बार ज्ञान स्नान करता है और बार बार देहंकार की धूल में लोट जाता है। बड़े फकुर से कहते हैं, ब्रह्मा बच्चों को गोद में लेता है, खिलाता है। अरे ये देहंकार बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। ये पांच विकारों का बाप है। क्या? देहभान, देहंकार, जो रावण के चित्र में गधे के रूप में दिखाया जाता है। बाप कहते हैं चित्र है तो जरूर कोई चरित्र करने वाला भी तो हुआ होगा ना। इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो 100% देहंकार वाला होगा ना? नहीं होगा? होगा। कोई तो काम विकार का 100% नमूना होगा ना? है? कौन है? दादा लिख रहा काम विकार का 100% नमूना। इब्राहिम तो परमधाम सप्तधाम से आती है आत्मा, वो कैसे हो सकती? वो जिसमें प्रवेश करती है वो अनेक जन्मों का दृष्टि का विविचारी सुख लेते लेते द्वापर के आदि में अत्यंत पतित बन जाती है, कमजोर आत्मा बन जाती है। उस कमजोर आत्मा में इब्राहिम की सोल प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही सभी धर्म पिताओं का हिसाब है। जो भी धर्म पिताएं आए इस सृष्टि में, सबसे कमजोर आत्मा जिसको देखने में आई उसी में प्रवेश कर लिया। कमजोर क्यों बने? संगम युग में बाप ने जो श्रीमत दी, क्या श्रीमत दी? संग के रंग से श्रेष्ठ बनेंगे, अनेकों के संग के रंग से भ्रष्ट बनेंगे। एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप को पहचानेंगे तो उसके संग के रंग से श्रेष्ठ बनेंगे। उस बाप को नहीं पहचाना, दीदी दादी दादाओं को पहचान लिया, उनका संग का रंग लेते रहे तो नीचे बनेंगे या ऊंचे बनेंगे? नीचे बनते। बाप ने कहा, शिव बाप ने, शिव बाप है एवर प्योर, एवर प्योर बाप एवर इम्प्योर में प्रवेश करता है, उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, आंखों को कंट्रोल करता है। तो बाप कहते हैं मैं बल तुम बच्चों को सकाश देता हूं दृष्टि का, तुम तो ऐसा नहीं करेंगे। शिव बाप जो एवर प्योर आत्मा है वो मुकर्रर रथ में आकर के दृष्टि का सकाश बच्चों को देता है। तो सकाश लेने वाले बच्चे, संग का रंग लेने वाले बच्चे, उनकी भावना में श्रेष्ठपना आएगा या भ्रष्टता आएगी? श्रेष्ठता आएगी। फिर बोला, तुम तो ऐसा नहीं करेंगे, मैं दृष्टि का सकाश देता हूँ, क्योंकि मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एवर प्योर हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कि तुम सब पतित आत्मा हो, दृष्टि भी पतित है। दृष्टि ही अगर पावन बन जाए तो और क्या चाहिए। इसलिए मुरली में बोला, 10-20-50 भूले तो तुम बच्चे रोज ही करते होगे, नहीं तो कोई दिन नोट करके देखना। कहीं बाहर की दुनिया में चक्कर लगाने जाना सारा दिन और नोट करते रहना, और रात को आकर के चेक करना। इतनी भूलें की दृष्टि की, तो बाप झूठा होगा या बच्चे झूठे बनेंगे? बच्चे झूठ बता सकते हैं, लेकिन बाप ने तो सच्ची बात ही बताई। कोई कहे है हम तो बुढ़े हैं, बाप कहता आज तो 70-75 साल के बच्चे पैदा करते रहते हैं, उनकी दृष्टि में भी उनकी इंद्रियों में भी विकार आता है। क्यों क्यों आता है? क्योंकि बचपन में महात्मा होते हैं, पहली अवस्था है सतोपदान, फिर शिशु की अवस्था से क्या बनते हैं? किशोर बनते हैं, किशोरी, तथो सामान्य स्टेज होती है। फिर नौजवान बनते हैं, रजो प्रधानता आती है, फिर इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और मन ठंडा हो जाता है, है? मन तो और ज्यादा तीखा हो जाता है। प्रबल इंद्रिय है मन, तो ऐसे नहीं है कि बूढ़े होने से कोई विकृतियां कम हो जाती हैं, विकृतियां और ही जास्ती बढ़ती है। क्योंकि बूढ़ों की गुप्त रहती है और जो नौजवान होते हैं उनकी प्रत्यक्ष हो जाती है, तो गुप्त में ज्यादा ताकत या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत है? गुप्त दान भी कहा जाता है, गुप्त दान महाकल्याण। तो बताया, इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है संपन्न, वो साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज में रहता है, साकार भी है और अव्यक्त भी है। सूक्ष्म स्टेज में रहता है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहता है, दुनियावी बातों के संकल्पों में नहीं रहता है। इसलिए सूक्ष्म परिचाई स्टेज भी है और शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है, इसलिए साकारी भी है। तो साकार और निराकार का मेल है, व्यक्त और अव्यक्त का मेल है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है। ये शिवलिंग तुम्हारी यादगार है। तुम बच्चे 40 ग्राम के रूप में पूजे जाते हो, छोटे छोटे लिंग, निराकारी स्टेज वाली आत्माएं। और जो बड़ा भाई है, तुम मनुष्य आत्माओं के बीच में, वो बड़े लिंग के रूप में पूजा जाता है। जो शालिग्राम है, छोटे छोटे लिंगाकार, उनमें बंधन दिखाते हैं। और शिवलिंग को कोई बंधन नहीं होता है, मना वो शिवलिंग के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा सदा स्वतंत्र है, स्व के तंत्र में है। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। किसके शासन में है? आत्मा के शासन। पहला जन्म है परम पद, कौन सा? विष्णु रूप। वो परम पद है पहले आदि जन्म में, सृष्टि के आदि में आत्मिक स्टेज वाला है या नहीं है? है तो आदि सो अंत, अंतिम जन्म में भी वो विष्णु रूप लक्ष्मी नारायण की आत्माएं पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के संकल्प में समाई हुई रहती हैं, आपस में एक दूसरे का विरोध होता ही नहीं है। उनमें से एक आत्मा का विरुद्ध है, वरों शंभु नतु रहो कुआरी। उस एक ही आत्मा का वर्ण करेगी, जब कभी भी कन्या बनेगी, जब कभी भी पुरुष बनेगी, तो एक का ही वर्ण करेगी, दूसरी आत्मा का वर्ण नहीं करेगी। ये जन्म जन्मांतर के प्योरिटी के संस्कार है। जो विष्णु में प्योरिटी दिखाई गई है, सर्पों की शैया के ऊपर आराम से लेटा हुआ है। सर्प तो बड़े विकारी होते हैं, खासकर काम विकार के विकारी। सर्दियों के अंदर रजाई में लेटा हुआ आदमी के पास एक सांप घुस जाए तो आराम से पड़ा रहेगा, है? रजाई बजाई छोड़ छाड़ के भागेगा, ठंड वंड सब भूल जाएगी। और वो विष्णु सर्प सर्पिणियों की शैया के बीच में आराम से पड़ा रहता है, इंद्रियों में कोई आवेग नहीं आता है। ऐसी निर्विश स्टेज उसको कहा जाता है विष्णु, नो विषयताल। क्या? इंद्रियों में कोई विषय, विषय वासना का नाम निशान नहीं रहता। तो वो व्यक्त भी है, मनुष्य शक्ति का बीज जब संपन्न बनता है तो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। तो सूक्ष्म वतन में भी दिखलाना पड़े, प्रजापिता भी यहाँ जरूर है। तुम भी फरिश्ते बनने के लिए आए हो ना? नंबर बार आज नहीं तो कल तुम बच्चों को भी फर्श की दुनिया से परे फरिश्ता बनना ही बनना है। कि देह के संबंधियों से रिश्ता कायम रखेंगे, मां विनाश से पहले फरिश्ता बनना ही बनना है। इसमें मुझो नहीं, अगर कोई बात नहीं समझते हो, क्योंकि ये नई बात है ना, बिल्कुल नई, नया ज्ञान है ना, तुम्हारे कोई भी शास्त्र वगैरह में ये ज्ञान नहीं है। बरोबर, ये है ही भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत। तो भगवान किसको कहा जाता है, हैं? धनवान किसको कहा जाता है, धन वाला हो तो धनवान, और जाने तो भगवान, ज्ञान जाने तो भगवान। तो बोलते हैं भगवान, इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है कि बोलते तो हैं भगवान, धनवान नहीं बोलते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा कर्म करने वाला। क्या, कैसा ऊंचा कर्म? 16,000 भगों का भगवंत और अहंकार है। जैसे धनवान को धन का अहंकार रहता है, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत निराकार दिखाते हैं। निराकार का मतलब ये है देह की स्मृति नहीं रहती, देह का रस अनुभव नहीं करता। फिर भी देखो, इतनी बात समझने के बाद भी तुम कृष्ण को भगवान कैसे कहते हो? भगवान तो एक है ना, ऐसे थोड़े ही कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शंकर भी भगवान, गणेश भी भगवान, हनुमान भी भगवान, गॉड इज वन कहा जाता है। कहते ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अरे ऊंचे ते ऊंचा का मतलब क्या है? पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है क्या, जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, अमरनाथ में मंदिर बनाया हुआ है? तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान वो जरूर निराकारी स्टेज की बात है, ऊंची स्टेज की बात है। और बरोबर वो निराकार बाप किसका बाप है? अरे चीटी का बाप चीटी, हाथी का बाप हाथी, सांप का बाप सांप जैसा। तो मनुष्य आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्मा है तो मनुष्य, लेकिन आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्मा। कैसी आत्मा? कैसे मनुष्य? जिनमें देह भान का महाविनाश के टाइम नाम निशान न रहे। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा ही देखें, ऐसी स्टेज बन जाए कि जब चाहे ये मिट्टी रूप शरीर को छोड़ करके दूर से आत्मा बन करके अपने ही शरीर को मुर्दा रूप में देखें, और जब चाहे तो उसमें प्रवेश भी कर जाए। उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। परम पिता माने आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, और परमात्मा। कैसी आत्मा? परम। जितनी भी चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, 84 के चक्र में, उनमें परम पार्टधारी हीरो आत्मा परमात्मा, जिसका टाइटल परमात्मा परम पिता के बाद लगा हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परम पिता। क्यों? शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि पहले बड़ा बाद में छोटा, तो बोला जो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत है वो किसका बाप है? सभी आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्माओं का भी बाप, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आत्माएं हैं या नहीं है, उन सब का बाप। बाप माने जन्मदाता, बाप माने जन्म दिया तो बीज बोने वाला बाप हुआ ना? नहीं हुआ? बाप इस सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी आत्माएं हैं, उन सब का रचयिता बाप। बताओ जो कीट पशु पक्षी पतंगे हैं उनमें आत्मा है या नहीं है? तो उनका रचयिता कौन? शिव बाप। कीट पशु पक्षियों का पतंगों का बाप है, उनको वर्षा देता है। कीट पशु पक्षी पतंगों को वर्षा देता है ज्ञान का? क्यों नहीं देता? उनको मन बुद्धि नहीं है, और मनुष्यों को मन बुद्धि है, इसलिए मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देता है, चैतन्य आत्माओं को ज्ञान देता है, जड़तुमयी आत्माओं को ज्ञान नहीं देता है। तो जड़तुमयी आत्माओं को ज्ञान देने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। वो एक ही बीज है, एक ही आत्मा है, जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव कहता है, शिव को मन है, जो कहे मेरे मन में समा जा। तो कौन कहता है? शिव जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है। कि मैं जब संपन्न स्टेज में स्थिर हो जाऊं तो मेरे मन में जो संकल्प स्थाई हो जाए, क्या संकल्प? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो मेरे मन में समा जाए, क्या मेरे मन में ज्योति बिंदु आत्मा, तो तेरे मन में भी क्या हो? एक ही संकल्प, दूसरा कोई संकल्प नहीं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं देह नहीं, देह का कोई अंग नहीं, मैं आत्मा, निसंकल्प आत्मा। कोई दुनिया भी संकल्प नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी स्टेज में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को बिंदु रूप में टिकना है अंत में। चाहे तो शिव बाप की बताई हुई योग की युक्तियों के लिए, ज्ञान की युक्तियों के हिसाब से, अगर उन युक्तियों को धारण नहीं किया, सहज सहज नहीं उठाया, तो जो देह के कर्म भोग हैं, बीमारी धीमारी उनके द्वारा कर्म भोग भोगना पड़ेगा, उसमें भी अगर रह जाता है तो फिर धर्मराज बाप बैठा है। वो दुनिया भी जो भी संकल्प आते हैं देवभान के, उन सारे ही संकल्पों को गंदे मार मार के खलास कर देगा। जैसे कोई बीज होता है, कोई बीज मोटे छिलके वाला, कोई बीज पतले छिलके वाला, कोई कड़क छिलके वाला, कोई हल्के छिलके वाला। तो धर्मराज ऐसा धर्म का राजा है कि दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, सारा देवान रूपी छिलका उतर जाएगा और आत्मा रूपी बीज रह जाएगा। जिस आत्मा रूपी बीज में नो संकल्प है काल सिवाय मैं आत्मा ज्योति बिंदु, जो भगवान का आदेश है, कौन सा मंत्र? महामंत्र मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं उसको पहचानेंगी जो कहता है मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? हाजी, जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ संसार की सभी आत्माएं खींची हुई जा रही है। झाड़ के चित्र में ध्यान से देखना, इस सृष्टि की सारी आत्माएं विनाश काल में उसी ओर खींची जा रही है, जो गीता में दिखाया है, दंसा करालान चते मुखाने, तेरे मुख में सात समय चले जा रहे। क्या देवता, क्या ऋषि मुनि, क्या विभूतियां, क्या मनुष्य, क्या राक्षसी आत्माएं कहां जा रही है? मन मना भव, जो मिसाल देते हैं संज्ञा की, हम आत्माएं सागर के बलबूले हैं, छोटे बड़े सागर में से बलबूले निकलते हैं, सागर में ही समा जाते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं छोटे बड़े संकल्प धारण करने वाली बलबूले मिसल आत्माएं हैं, जो उस ज्ञान सागर से निकलते हैं सृष्टि के आदिकाल में। नंबर वन, जैसे पहले कृष्ण की आत्मा, फिर राधा की आत्मा, फिर दूसरी दूसरी आत्मा, नंबर वार निकलते हैं और नंबर वार उसी में समा जाते हैं। तो बोला वो ही भगवान है, जिस भगवान में सब समा जाते हैं, उसी भगवान बाप से सब बाहर आते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान निराकार है और बरोबर किसका बाप है? आत्माओं का बाप। सभी आत्माएं भाई भाई, अरे भाई भाई तो हैं, परंतु तुम आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ है? हैं? कहाँ है तुम आत्माओं के रहने का स्थान? परम धाम। बाप तो कहते हैं परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो कौन से धाम में जाएंगे? कौन सा नजदीक है, कौन सा दूर है? है जो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? है एक को याद करें, यहाँ तो तीन बातें हो गई। सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, अपने बाप को याद करो। हाँ, इस सृष्टि पर है वो मनुष्य शक्ति का बाप ही है, जो परम धाम को, निराकारी धाम को अपने अंदर उतार लेता है। इस सृष्टि पर ही निराकारी धाम, उस निराकारी धाम में हम सब आत्माएं समा जाएंगी और उसी से फिर बाहर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आवेंगे। तो हमारा स्थान परम धाम में है, जहाँ हमारा बाबा भी रहते हैं। क्या उस परम धाम में हमारे बाबा की भी आत्मा है और हमारी भी आत्मा वही ही बासी है? जैसे कोई परिवार होता है, परिवार के भांति होते हैं। नंबर वार पहला भांति होती है माता, पहली रहते ना, फिर बड़ा बच्चा, फिर मझले बच्चे, फिर छोटे बच्चे। जो भी भांति है परिवार के, कहां से जन्म लेते हैं? है कहां से जन्म लेते? माता से। माता में कहाँ से आए? हैं? माता में कहाँ से आए? बाप से आई। जो भी भांति है सब बाप के अंदर से आई ना। जो बाप पहले पहले नीचे आता है, मनुष्य सृष्टि का बाप भी ऊंची स्टेज से नीचे आएगा, तब तो कृष्ण बच्चा पैदा होगा। नहीं, और दुनियावी बाप भी है, देवान की चंचलता में आएंगे तो बच्चों की पैदाइश होगी। इंद्रियों की चंचलता नहीं आएगी तो बच्चों की पैदाइश नहीं होगी। वो ऊंचे से ऊंचा बाप आत्माओं का, वो भी ऊपर ही रहता है या नीचे आता है? वो भी नीचे आता है। नीचे आता है तो ऊंचा बनकर के आता है या नीचा बनकर के आता है? ऊंचा बनकर के आता है। आशिक होकर आता है या माशूक बन के आता है? कौन किसके पीछे भागता है? आशिक भागता है, माशूक नहीं भागता। तो कौन दमदार है? आशिक दमदार है, माशूक दमदार है। जिसके पीछे आशिक को भी भागना पड़ता है। देखो ये बोला, जितने भी पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन, सब नीचे की स्टेज में आते हैं, सब क्षरित होते हैं। जो सत्य है, जिस सत्य को धारण करने वाली सती कही जाती है, सतीत्व की शक्ति बड़े बड़े राक्षसों को जीत पहनाई देती है। जालंधर जैसा बड़ा राक्षस कब तक जीत पाता रहा? जब तक वृंदा की पवित्रता अक्षुण्ण रही। यही बात बाप कहते हैं, आत्माओं का बाप। तुम भारत की कन्याएं माताएं स्वर्ग स्थापन करने वाली हो। क्या? क्योंकि पुरुष के अंदर जो सत्य है, जो शक्ति है, उस सत्य की शक्ति को तुम धारण करती हो। पुरुष तो क्षरित हो जाता है, ऊंचाई से नीचे गिरता है या ऊपर चढ़ जाता है? एक ही पुरुष है इस साकार सृष्टि में, वो भी जब आत्माओं के बाप से वो सत्य ज्ञान मिलता है, उस सत्य ज्ञान के आधार पर अपने को अमोघ वीर्य बना पाता है। सत्य को नीचे गिरने से जहां का तहां रोक लेता है। बाकी कोई मनुष्य मात्र नहीं है, जो अपने को छरित होने से बचा सके। इसलिए बल देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग इंद्रिय किसी देवता की नहीं पूजी जाती। लिंग इंद्रिय सिर्फ है, एक ही महादेव है जिसके लिंग की पूजा होती है। पूजा पवित्र की होती है या छरित होने वाले की होती है? है पवित्रता की पूजा होती है। तो वो एक ही सत्य है। इस सृष्टि में इसलिए बताया कि ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची, तीनों बार पसंद नहीं आई और खेड़ बखेड़ा कर दिया। बयालीस से सैतालीस के बीच, छत्तीस में जो पहली बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई वो बयालीस से सैतालीस तक बिगड़ गई, ओम मंडली खलास हो गई। और दूसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची सन सैतालीस से ओम मंडली खलास करके दूसरी ब्राह्मण सृष्टि का नाम क्या हुआ है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। जो सृष्टि 1969 तक 18 जनवरी तक चलती रही, तो जो रचयिता था ब्रह्मा उसका शरीर छूट गया, रचयिता ही चला गया तो सृष्टि का भी विघटन होने लगा। पहले माउंट आबू से सभी ब्राह्मणों का संचालन होता था, शासन चलता था। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियों ने अपने अपने जोनल इंचार्ज बन करके अलगाव कर लिया। जैसे द्वापर युग से धर्म पिताओं ने अपने अपने धर्म खंड अलग अलग कर लिए, विघटन शुरू हुआ और उसकी समाप्ति का भी मुरली में बता दिया। क्या बताया? कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। मन क्षेत्र में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जोर शोर से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया। तो क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारियों का विघटन शुरू हो गया और नारायणवली सृष्टि की पहली आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले गई। आप मुए मर गई दुनिया। सृष्टि की बीज रूप आत्मा ने पुराने ब्राह्मणों की दुनिया से अपने को डिटैच कर लिया। नई दुनिया रचने लायक बना लिया। बीज परिपक्व हो गया और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया शुरू हो गई। नाम क्या पड़ा? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। दुनिया बदल गई, दूसरी बार रची गई ब्राह्मणों की दुनिया जो 47 में रची गई उसका विनाश हो गया। नई दुनिया की स्थापना शुरू हो गई तीसरी बार और उस नई दुनिया के बारे में भी बता दिया। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। माने तुम बच्चों में से कोई बच्चे हैं जो 40 वर्ष पूरे होते होते नया संगठन ब्राह्मणों का तैयार करेंगे। जैसे क्षत्र में लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुए, ब्राह्मणों की दुनिया का नया संगठन स्थापन करने वाले आ गए। अब ये तीसरी दुनिया का भी विनाश, ब्रह्मा द्वारा रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया तीन बार ध्वस्त होती है, फिर भी एक बीज बचा रहता है। क्या एक बीज बचता है और उस बीज रूप बाप से फिर से नई दुनिया चौथी बार स्थापन होती है, फिर उसका विघटन नहीं होता। ओम शांति।